بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ، اور آج کے ہمارے اسپیشل گیسٹ امام سلیم الوی صاحب ہیں۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقاص میر، بہت شکریہ کہ پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر لسنرز سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
جزاک اللہ خیر کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اس کے لیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے ساتھ ساتھ شاید زیادہ ہمیں روشنی ڈالنی چاہیے اس چیز کے اوپر کہ ہم جب ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر ہم نان مسلمز کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو ہمارا انٹریکشن ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے۔ کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں یا پھر سنتے ہیں مختلف پوڈ کاسٹ کو یا پھر ٹی وی کے پروگرامس کو دیکھتے ہیں، تو کہیں زیادہ ایکسٹریم کی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں کہ آپ ہاتھ تک نہیں ملا سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جینڈرز کی بات الگ ہے، لیکن آپ بات چیت جب کریں تو زیادہ گھلنا ملنا نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، ہمارے ولی نہیں ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ابھی کیونکہ زیادہ لسنرز مختلف ممالک سے سن رہے ہیں، یورپ سے ہیں، امریکہ سے ہیں، پاکستان سے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کیونکہ ہم دونوں اس وقت ناروے میں ہیں تو اس لیے شاید یہ ٹاپک ہمارے ناروے کے پاکستانی اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے بھی کافی زیادہ آج ان کو بھی کچھ نہ کچھ سکھائے گا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟
خاص بھائی، دیکھیں اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف جو ہے وہ ایک کنٹری کے اندر رہ کے اس کو، دین کو یا کلچر کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔
بالکل بالکل سر،
دنیا جب گلوبل ولیج بن چکی ہے تو اب اس میں مینارٹی اور میجارٹی جو ہے وہ اس انداز میں نہیں رہا۔ چیزیں متاثر کرتی ہیں اور چیزیں بہت زیادہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ جیسے بھی آپ دیکھ لیں کہ یوکرائن اور رشیا کی جو سلسلہ چل رہا ہے اس نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، اسی طرح فلسطین کا اور اسرائیل کا مسئلہ پوری دنیا میں اب جو بھی ہو رہا ہے سب کے سامنے اب آ رہا ہے۔ تو جس کی اپنے یہ جو ٹاپک چنا ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، اور میرے خیال سے اس پہ بات ہونی بھی چاہیے اور یہ اس پہ بات کرتے رہنا چاہیے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک مسلمان کا بیہیویئر، اسپیشلی جب آپ ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہوں تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اور ملٹی کلچرل سوسائٹی میں اگر آپ نہ بھی رہتے ہوں تو آپ کے پاس جو پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے، چاہے انسٹاگرام ہے، چاہے فیس بک ہے، چاہے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں، تو ان پہ تو وہ تو ساری چیزیں آپ کی سب کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمیں رویہ کیا رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا طرز عمل، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہاں پہ آپ نے ایک بات کی ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہودیوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہودیوں کا ذکر اللہ نے کیا، نصارہ کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا دوست والا، جو قرآن کے الفاظ ہیں، اولیاء، لا تتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ آپ مومنوں کے چھوڑ کر کافروں کو ولی نہ بنائیں۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ یہ صرف یہ جو لفظ ہے نا، اس لفظ پہ اگر ہم غور کر لیں گے تو ہماری بہت ساری جو کنفیوژن ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے کہ ولی کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ ولی جو ہوتا ہے، ولی صرف یہ نہیں ہوتا کہ دوست ہوتا ہے، ولی وہ فل اتھارٹی کا حامل وکیل ہوتا ہے کہ جو باقاعدہ طور پہ کسی کا نکاح کر بھی سکتا ہے اور نکاح ختم بھی کر سکتا ہے اس کے بیہاف پہ، یعنی اس حد تک اس کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو منع کیا ہے کہ اپنے کفار کو ولی نہیں بنانا، یعنی ان کو وہ اس لیول پہ نہیں لے جانا کہ وہ آپ کی جو ہے وہ پرسنل جو چیزیں ہیں وہ ڈیسائیڈ وہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کے بیہاف پہ، یعنی آپ کا ان کے ساتھ سوشل ریلیشن، اس سے منع نہیں کیا گیا، اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ میں پھر ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں، منع جو کیا گیا ہے وہ ان کو اپنا ہمراز بنانا یا ان کو اپنا اس لیول پہ لے جانا کہ وہ ہماری چیزیں وہ ڈیسائیڈ کرنا شروع کر لیں، ہماری پالیسیوں پہ وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں، تو ان کو مشیر یا ایڈوائزر یا اس لیول پہ جو ہے وہ لے جانے سے منع کیا گیا۔
یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ بات کریں، اب ایک تو ملک ہو گیا نا، बातों को वली ना मनाओ, या फिर मैं एक एज अ पर्सन, आप एज अ पर्सन, क्या आपके ऊपर भी ये आयत जो लागू होती है या फिर इज्तमाही तौर पे हो रही है? हमें हुक्म क्या दिया जा रहा है यहाँ पे?
देखें, जब कुरान मुखातिब करता है तो इनफरादी मामलात भी उसमें आते हैं, इज्तमाही मामलात भी इसमें आते हैं। तो इनफरादी मामलात में भी देखें ना, एक एज अ पर्सन मेरी एक ज़िंदगी है, अब उसमें जो वालिदैन से मैंने मुशावरत करनी है, ठीक है, अगर मैं अपने वालिदैन के बजाय किसी, जाहिर बात है कि किसी दूसरे से करूँगा मशवरा, तो वो मेरी सिचुएशन को उस अंदाज़ में नहीं समझते हैं,
बेशक
ठीक है। तो इसी तरह जब एक ऐसा बंदा नॉन मुस्लिम, उसको मैं वो मशवरा या उसके मशवरे पे मैं अपनी चीज़ें तय करना शुरू कर देता हूँ। एक होती है एक प्रोफेशनल ओपिनियन, वो एक अलग चीज़ है, वो एक्सपर्टीज़ होते हैं, उसमें वो अपने प्रोफेशन के लिहाज से वो आपको एक ओपिनियन देते हैं, सजेशन देते हैं, वो एक अलग पहलू है।
अच्छा
बात ये आ रही है कि जब एज अ होल आप उनको इस अंदाज में लेके आते हैं, देखें अब एक अगर एक वकील है, एक एडवोकेट है, ठीक है, और उसको हम उसे यानी कानून के हवाले से रहनुमाई लेते हैं, उसकी ओपिनियन ले लेते हैं कि जी आपकी इसमें क्या राय है या इस केस को कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो जाहिर बात है कि उसने अपने एक एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपनी एक नॉलेज के लिहाज से, और उसका वो एक प्रोफेशन है उसके लिहाज से हम उसकी राय ले रहे हैं, तो उसमें तो कोई मसला नहीं है,
उसमें
इसमें तो
कोई मसला
मुसलमान गैर मुस्लिम की कोई नहीं है। इसी तरह डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर उससे हम राय लेते हैं, उसमें मुसलमान गैर मुस्लिम का कोई मसला नहीं है। मसला ये आ रहा है कि जब हमारे जो सोशल बिहेवियर है और उसके बाद हमारे जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर हम उनको उस अंदाज में न लेके आए या उनकी मुशावरत पे हम अपनी पॉलिसियां न बनाएं और न चेंज करें
अपनी जिंदगी के
अपनी
ऊपर।
ज़िंदगी की, इनफरादी ज़िंदगी भी और इज्तमाही ज़िंदगी भी उसमें।
लेकिन साइकोलॉजिस्ट के बारे में क्या कहें, क्योंकि अभी अब बात कर रहे हैं, अगर साइकोलॉजिस्ट ऐसा हो जो कि आपकी आपकी जहन साजी करता है, आपके सवाल सुनता है, फिर आपको जवाब देता है, तो इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट, मुस्लिम काउंसलर्स। तो इसके हवाले से ये वली का टॉपिक आगे लेके जाते जाएं तो क्या कहेंगे आप?
देखें, मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, साइकोलॉजी यानी एक एक पेशेंट है, चाहे वो मेंटली उसका इशू है या फिजिकली उसका इशू है, फिजिकल इशू है तो उसके लिए तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे,
जी
लेकिन अगर मेंटल इश्यूज हैं या कोई कम्प्लेक्सेस हैं तो उसमें जाहिर बात है कि हमने किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करना है, उससे ओपिनियन लेनी है, उससे डिस्कस करना है, तो उसमें ये वली वाला मसला नहीं आता। ये तो एक जो प्रोफेशनल एक रिलेशन आता है, प्रोफेशनल रिलेशन में इस्लाम मना नहीं करता है। मैंने पहले जिक्र किया है कि जो मना किया गया है वो पॉलिसीज़ के हवाले से, कि आपकी सारी डायरेक्शन ही उसके बाद चेंज हो जाए, या आपका एज अ स्टेट जो है वो जो रवैया है वो चेंज हो जाए, तो उस चीज़ से मना किया गया है, इनफरादी तौर पर इन चीज़ों से मना नहीं किया गया।
अच्छा नहीं, मेरा साइकोलॉजिस्ट के बात करने के पीछे एक मकसद था, वो ये था कि जब एक मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट होगा या फिर आप होंगे जो काउंसलर के तौर पे, तो आप तो एक दीनी हवाले से जवाब देंगे ना। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर किसी भी किस्म के थेरेपिस्ट जो होते हैं, वो जब भी जवाब देंगे वो इस तरह से देंगे कि एक तो अपनी प्रोफेशन की वजह से, और दूसरा ये कि दीनी हवाले से कि आप नमाज पढ़ें, आप ऐसे करें, आप इस तरह से अपने जहन को, अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करें नमाजों के ऊपर। मेरा मकसद कहने का ये था।
जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए ना, मैं जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, ठीक है,
जी हाँ
स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, ठीक है, वो तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, उसमें तो अगर आप उस चीज़ को लेते हैं, अपने इमाम से कंसल्ट करते हैं, किसी भी रिलीजियस आदमी से उसे आप अगर गाइडलाइन लेते हैं, तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। बात ये हो रही है कि अगर कोई साइकेट्रिस्ट जो भी है, ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है कि मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जब कोई इश्यूज हैं, ठीक है, कोई कम्प्लेक्सेस हैं, तो उनमें ज़ाहिर बात है कि अगर कोई मुस्लिम स्कॉलर होगा या मुस्लिम साइकेट्रिस्ट होगा तो उसका जो समझाना है वो इस अकॉर्डिंग टू इस्लाम होगा, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसने तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन्हीं के हवाले से उसने बात करनी है,
सही
तो
बात है।
उसमें ज़्यादा इफेक्टिव तो वो होगा कि जो मुसलमान होगा, लेकिन आप नॉन मुस्लिम के पास भी कोई जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमने इसको ना इस चीज़ के साथ वो जो वली वाला है कि वली उनको नहीं बताना कि वो हमारी चीज़ें डिसाइड करना शुरू कर दें, हमारी पॉलिसियां वो बनाना शुरू कर दें, वो चीज़ें तय करना शुरू कर दें, तो फिर वो जो हमारी आइडेंटिटी है या वो हमारी जो आज़ादी है और वो सारी चीज़ें, वो फ्रीडम है, वो सारा ख़त्म हो जाता है कि जब उनके पास तो यानी एक लिमिट रखी गई है सोशल मामलात के अंदर या बाकी जो स्टेट के मामलात हैं। बाकी यहाँ तक बात है कि हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में रहते हुए जो नॉन मुस्लिम हैं तो उनके साथ हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए। इसमें मदीना की मिसाल ले सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमारे सामने है कि मदीना में यहूदी आबाद थे पहले से, ठीक है। तो हुजूर का रवैया उनके साथ कैसा था, ठीक है। यहूदी, कल हम एक हदीस पढ़ रहे थे, हमारी क्लास थी, तो एक यहूदी बच्चा हुजूर के पास आया करता था, बीमार हो गया, हुजूर को पता चला, हुजूर बाकायदा उसके घर उसकी बीमार पुरसी करने के लिए गए। यानी नॉन मुस्लिम की बीमार पुरसी करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जा रहे हैं। तो इसमें हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि सोशल, इस्लाम एक सोशल रिलीजन है, ठीक है। इस्लाम इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं करता है कि आप सोशली दूसरों के साथ जो है वो कांटेक्ट रखें, उनके साथ आना जाना रखें, उनकी खुशी गमी में आप उनके साथ मामलात करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। नजरान से ईसाइयों का एक वफद उनके रिब्बी, उनके पादरी की क़यादत में आता है, और सारे वो स्कॉलर थे, उनके इंटरनेशनल डेलीगेशन आया हुजूर के पास, हुजूर ने मस्जिद में उनको ठहराया, मस्जिद में, वो मस्जिद नबवी में ठहरे और तकरीबन एक हफ्ता वो ठहरे। तो जब उनकी इबादत का टाइम आता था तो हुजूर कहते भाई ठीक है अपनी इबादत करो, कोई मसला नहीं है, मस्जिद नबवी के अंदर वो अपने तरीके से इबादत करते थे। और ये 7-8 दिन वो डायलॉग चलता रहा, मुख्तलिफ सेशन हुए, और एट द एंड उन्होंने जो है वो जिजिया देना, टैक्स देना कबूल किया, ठीक, लेकिन इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया।
लेकिन कहाँ पर ये जाके चेंज है? मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, वहाँ पर जब बड़ा हुआ तो ऐसे ऐसे अल्फाज सुनने को मिलते थे जो कि कहा जाता था नॉन मुस्लिम्स को, जो वहाँ पर क्रिश्चियंस वगैरह बेचारे रहते हैं, तो उनको मुख्तलिफ किस्म के टाइटल्स के साथ बुलाना। फिर बड़े हुए, फिर वापस कॉलेज में गया, फिर भी वहीं का वहीं वो पूरे का पूरा सिस्टम। तो ये कहाँ से चेंज हुआ है? इतना बड़ा टिल्ट कहाँ पे आया है जहाँ पर हम मानने वाले तो नबी पाकलम के उम्मती हैं लेकिन सब कुछ उल्ट कर रहे हैं। अगर उन्होंने मस्जिद में उनको ठहराया, उसके बाद उनकी इज्जत से उनसे बात करते थे, यहूदियों से मुशावरत भी करते थे, उनके साथ सुनते भी थे, उनको सुनाते भी थे, तो यहाँ पर कहाँ पर ये चेंज हुआ और कौन सी सदी में क्या चेंज आया? किसने क्या पढ़ के फूंक दिया कि हमें लगता है कि जी हम जाहिर सी बात है कलमा पढ़ने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा अल्लाह से तोहफा मिला हमें, लेकिन कहाँ पर ये चेंज आया कि हम अपने आप को ये समझें?
असल में ना अवकाश भी जो प्रॉब्लम है ना, मैं अक्सर ये लफ्ज़ कहता होता हूँ कि हमने कल्चर को और रिलीजन को मिक्स कर दिया, और जो हमारा इंडियन कल्चर है वो हमारे रिलीजन के ऊपर भी हावी हो गया।
बहुत हद तक
आप देखें, हम यहाँ पे एक चूँकि मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड के मुसलमानों से आपका वास्ता पड़ता है, उनकी खुशी गमियों में आप शरीक होते हैं, तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हमारा जो जो वरियन है ना, इस्लाम का वरियन,
बैक होम।
तो वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है दीगर लोगों की नस्बत, ठीक है। नहीं, उसमें वो नेचुरल उस अंदाज में नहीं है चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें ना
मिलावट
जैसे
बनी हुई है सर।
आर्टिफिशियल सी होती हैं, या वो बहुत ज़्यादा उनमें वो किया गया है, उन्हीं चीज़ों के अंदर ये ज़ात पात का भी है, क्योंकि एक इंडियन माशरे के अंदर ज़ात पात का निज़ाम है, ये शूदर हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, एक एक जो है वो आला तबका है और एक
सबसे
अदना
नीचे
तबका है।
बिल्कुल सर।
तो उसी को हमने इस्लामाइज किया कि हम में भी अब क्या है कि ये जी फलां कबीला है, ये फलां रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो बड़ा वाज़ह वाज़ह फरमान हमारे सामने है, मैंने इसमें भी हमारी बात हुई थी कि हुज़ूर ने अपनी फूफी को खिताब किया, अपने चचा को खिताब किया, अपनी बेटी को खिताब करके कहा कि अल्लाह के रसूल का के साथ तुम्हारा रिश्ता कुछ काम नहीं आएगा, ठीक, तो मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकूंगा, तुम अमल करो। तो कुरान हमें क्या बताता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का वाकया हमारे सामने आता है,
बिल्कुल सर,
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का वाकया हमारे सामने आता
बेशक
है, ठीक। तो ये क्या चीज़ें हमें बताते हैं कि नस्बतें या रिलेशन काम नहीं आते। हमारे यहाँ तो हमने बना लिया है कि जी ये वो फलां कबीले का के अंदर भी अगर कोई पैदा हुआ है तो वो जो मर्जी करता रहे, ठीक,
सीधा ऊपर।
तो वो उसकी ये निस्बत ही सिर्फ काम आएगी। तो ये असल में वो चीज़ें, वो जो इंडियन कल्चर से हमें आई थी, तो वो चीज़ें हमने उनको उसी अंदाज में आगे लिया है, और उसके बाद फिर क्या कर लिया कि फिर एक दूसरी चीज़ उसी के ज़िमन में कि कुछ पेशे थे, ठीक है, अब देखिए वो भी हमारे जैसे इंसान है, उन्होंने किसी ने क्या, किसी ने जमींदारा किया, किसी ने इंसानों की मदद के लिए क्या काम शुरू कर लिया, किसी ने क्या, तो उन्हीं के अंदर अब जो उस पेशे के साथ मुंसलिक लोग हैं उनके घर में जो बच्चा पैदा होगा तो वो भी वही समझा जाएगा डे वन से, और
नेचुरल
फिर आगे वही चीज़ें आगे चलती चली जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना दो चीज़ों पे खुसूसी फोकस किया, एक वहदत रब पे और दूसरा वहदत अब पे। ये लफ्ज़ थोड़ा सा गौर तलब है कि वहदत रब के रब एक है और दूसरा वहदत अब के अब भी एक है। सब कुल लुकुम बनू आदम, तुम सारे आदम की औलाद हो, आदम मिन तुराब। ये जो अल्लाह के नबी का फरमान है कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने वो सारी चीज़ें ख़त्म की हैं कि वो जो बर्तरी के मेयारात हमने बनाए हुए उस ज़माने में जो बनाए हुए थे वो भी, और ज़माने जदीद की जो जाहिलियत है इसके अंदर भी वही मेयारात बने हुए हैं। तो हम डेली बेसिस पे इसको ऑब्जर्व करते हैं कि जी एक बिरादरी के लोग वो दूसरी बिरादरी में रिश्ता करना, रिश्ता लेना वो ऐब समझा जाता है, अगर कोई कर लेता है तो उसको वो नापसंदीदगी के साथ देखा जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं कि जो अब ये हमारा एक दूसरे के साथ, ये मुसलमानों का मुसलमानों के साथ ये रवैया है, तो गैर मुस्लिमों के साथ तो फिर क्या कैफियत है कि हमने उनको उनको भी तकसीम कर दिया कि ये जो है वो ये काम करने के लिए हैं, ये काम करने के लिए हैं, ये काम करने के लिए। ये हमारे यहाँ तो है कि ये जो सफाई सुथराई का जितना भी काम होगा, ठीक है, तो वो वही करेंगे, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। तो ये चीज़ें भी नापसंदीदा हैं।
तो कैसे चेंज किया जाए इसको, कहाँ से शुरुआत की जाए?
इसकी शुरुआत तो देखें दो चीज़ें हैं ना कि जहाँ से तरबियत हासिल होती है, एक मेंबर, ठीक, मेंबर व मेहराब हैं, और दूसरे नंबर पर दरसगाह है, तालीमी निज़ाम है। तालीमी निज़ाम के अंदर ये चीज़ें, फिर मेंबर व मेहराब से यही चीज़ें आगे ले जाई जाएं। अपने हमारे बरसग़ीर के बड़े मशहूर स्कॉलर गुजरे हैं, लामा अताउल्लाह शाह बुखारी, अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम आपने सुना है, बड़े
जी
मशहूर। तो शाह साहब के बारे में, वो बड़े मुकर्रर थे उस ज़माने में, उनका बड़ा एक नाम था, और बड़े लोग जब वो तकरीर करते थे तो घंटों उनकी तकरीरें जारी रहती थीं, और किसी यानी इतनी वो अट्रैक्टिव होती थी कि किसी का ना उसमें पलक झपकने का भी जिसे कहते
सुना
हैं वो। तो शाह साहब एक जगह पे तकरीर करने के लिए गए, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बंदा वो सफाई कर रहा है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो सफाई हो रही है, वो सफाई कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो सफाई के लिए वो क्रिश्चियन ही उन्हीं को कहते हैं कि आपने सफाई करनी, तो वो सफाई कर रहा था। तो शाह साहब ने उसको बुलाया, उसे कहते हैं कि आओ खाना खाओ, प्रोग्राम से फारे हो गए। तो वो कहता है कि शाह साहब आप, मैं आपके साथ कैसे खाना खाऊँ? वहाँ कहा बैठो इधर, उसे अपने साथ बिठा लिया, बिठा के उसके बाद फिर शाह साहब ने क्या कहा कि खाओ। तो वो हिचकिचाने लगा क्योंकि हम तो जो यानी तबकाती निज़ाम है, दूसरे
बिल्कुल
तबके के लोगों को साथ बिठाना भी पसंद नहीं करते। शाह साहब ने उसको अपने साथ दस्तरखान पर बिठाया, फिर क्या किया कि उधर से वो आपने आलू था वो उठाया और उसके मुंह में डाला आधा, तो उसने जो ही उसको चक्की लगाई तो आधा जो बचा हुआ था वो अपने मुंह में डाल लिया। तो वो तो रोना शुरू हो गया जब उसने ये मंजर देखा। तो हमारे यहाँ तो अब ये भी होता है ना कि जूठा किसी का पानी बचा हुआ है, चाय बची हुई है, या प्लेट, वो भी शेयर करना हम नापसंद करते
सब
हैं,
सुना हुआ मैंने, बिल्कुल
ठीक। तो ये बिल्कुल अब ये सवाल बाकायदा आते हैं, लोग पूछते हैं, ये वही असल में उसी कल्चर से वो चीज़ें हमें चली आ रही हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो तालीमात ये नहीं है, इस्लाम की तालीमात ये नहीं है। अब शाह साहब ने जब उसके साथ ये अमल किया, और ख़ुद अब क्या कर रहे हैं, लुकमा तोड़ तोड़ के उसके मुँह में डाल रहे हैं, खा रहे हैं उसके साथ, तो वो इतना मुतासर हुआ, इतने उस के वो फ़ौरन फारिग होके जाता है घर, अपनी फैमिली को उसी वक्त तैयार करके ले आता है, कहता है शाह साहब हमें कलमा पढ़ाएं, अगर ये इस्लाम है,
सुबह।
ठीक है। तो मसला तो ये है ना कि हमने इन इस्लाम का ये जो हुस्ने अमल है, ये जो लोगों के साथ मामलात हैं, उस पहलू को तो बिल्कुल अमली तौर पे छोड़ दिया है, और वही नस्लन बाद नस्लन जो चीज़ें हमें आ रही हैं उन्हीं को हमने अडॉप्ट किया हुआ है और लेके चल रहे हैं। तो ये मसाइल इस वजह से हैं।
बिल्कुल, आपने एजुकेशन की बात की कि मिंबर से भी होगा और जाहिर सी बात तालीम से भी। क्या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में कुछ इस तरह की बातों के ऊपर फोकस किया जाता है या फिर बिल्कुल साइड साइड लाइन कर दिया जाता है कि बाकी चीज़ों चीज़ें पढ़ाते
असल
हैं
में
आप?
बहुत सारी चीज़ें काश भी ऐसी हैं कि जो नेगेटिव प्रोपिगेट होती हैं,
अच्छा
और जब आप एक डिस्टेंस रखते हैं तो उस डिस्टेंस की वजह से वो कभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाती हैं, उल्टा वो कन्फ्यूजन या जो मिसकंसेप्शंस हैं वो बढ़ते हैं, वो कम नहीं होता। अभी नवंबर में मुझे यहाँ से एक डेलीगेशन के साथ, इमामों का एक डेलीगेशन था, उसके साथ पाकिस्तान जाने का मौका मिला। पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर हुआ था जड़ावाला में, चर्चेज को आग लगाई गई थी और वो एक पूरा हादसा हुआ था, तो उसमें वहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और मैं आपको बताऊँ कि मैं फर्स्ट टाइम, यानी पाकिस्तान में मैं पला बड़ा, स्टडी वहीं पे हुई, लेकिन मैं कभी भी किसी, यानी पादरी से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और फिर कभी किसी क्रिश्चियन के साथ इस तरह बैठ के बात करने का मौका नहीं मिला, और कभी भी उनकी चर्च को विजिट नहीं किया।
देखिए
तो अब जब मुझे पहली दफ़ा, मेरे लिए पहली दफ़ा थी यहाँ आके, मैं अब सारी कम्युनिटीज के
बिल्कुल
इबादत खानों में आना जाना और वो
बिल्कुल
सारी चीज़ें, उनके लीडर के साथ मुलाकातें होती हैं, डिस्कशन होती है, तो वो अब एक मिसकंसेप्शंस बहुत सारे जो पैदा हुए हुए थे उनके बारे में और उनके हमारे बारे में, जो भी मुसलमान ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, लेकिन जब मिल बैठते हैं तो मिल बैठ के आप अपनी बात उनसे करते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं, तो बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं कि इतनी गलतफहमियां ज़्यादा जो है वो हैं, असल बात इतनी नहीं थी, यानी हकीकत से हट के।
तो आपके लिए एक किस्म का वो एक्सपीरियंस जो है वो एक आई ओपनर था।
जाहिर सी बात है, अब देखें कि हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हमें माइनॉरिटी है, 3% हमारी आबादी है मुसलमानों की, और हम किस अंदाज में अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे हमने उनको, यानी वहाँ पे वो भी 3% हैं, तो उनको हमने कितनी आज़ादी दी हुई है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकें। तो वहाँ पे क्या है कि उनकी सर्विस के दौरान बाकायदा पुलिस बाहर खड़ी होगी, सिक्योरिटी होगी, फिर वो अपनी इबादत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और वो उनका भी ये बताना था कि दुनिया में कहीं कोई वाकया होता है तो हमें यहाँ पे परेशानी लग जाती है, कि यानी इनसिक्योर अपने आप को फील करते हैं, लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है कोई एक इंसिडेंट हुआ है तो यहाँ मकामी कम्युनिटी आके सपोर्ट करती है, और सपोर्ट करने के लिए वो साथ खड़े होते हैं। ये थोड़ा सा, यानी एक बिहेवियर का भी फ़र्क है, तो डायलॉग होना चाहिए, डिस्टेंसिंग ख़त्म होनी चाहिए। फिर इसमें यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ जो सिलेबस के हवाले से मैंने देखी है कि यहाँ पे जो रिलीजियस सब्जेक्ट है, यानी इसको पाकिस्तान में हम सोशल साइंसेस कह सकते हैं, तो उसमें यहाँ पे ये होता है कि बाकायदा मजाहिब की इबादत गाहों में और उनके जो लीडर्स होते हैं उनके साथ मुलाकातें उस क्लास की करवाई जाती हैं, बच्चों की करवाई जाती हैं,
हाँ जी
ताकि वो समझें, और पहले उनको उनके उस रिलीजन के बारे में नो हाउ दी जाती है कि वो रिलीजन है क्या, उनके कायद क्या हैं, नज़रियात क्या हैं। तो उससे होते होते क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के जहन में पहले से बन चुकी होती हैं, और वो मामलात बेहतर हो चुके होते हैं, तो वो एक्सट्रीमिज्म या वो शिद्दत पसंदी या वो दूरी की जो कैफियत है वो नहीं होती।
बिल्कुल, आईसीसी नॉर्वे में भी बच्चों की क्लासें आती हैं। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या देखते हैं आप कि नॉर्वेजियन बच्चे जब इस मस्जिद में आते हैं तो क्या लगता है आपको उनकी जहन साजी किस तरह से होगी अब?
देखें, चूंकि मीडिया में मुसलमानों को गुज़श्ता 20-25 साल, 30 साल अगर आप कहें, तो मुसलमानों को ना टेररिस्ट बना के दिखाया जाता है,
बिल्कुल
मुसलमान टेररिस्ट हैं, मुसलमान ये हैं वो हैं वो हैं, तो वो लोगों के जहनों में, आम लोगों के जहनों के अंदर ये होता है कि ये शायद जो मस्जिद है, ये शायद बम बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे ये टैंक बनाते हैं, ये इस तरह की कोई चीज़ें, वो एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जब वो आते हैं क्लासेस के साथ, हमारे पास तकरीबन सालाना 8 से 10 हज़ार बच्चे सालाना आते हैं,
सुबह
विजिट करते हैं मुख्तलिफ, यानी यहाँ पे चूंकि है कि छोटे बच्चों की भी क्लासेस आती हैं, लेकिन ज़्यादा जो हैं वो कॉलेज के या जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो आते हैं, और वो आके उनकी एक, चूंकि एक बेस बन चुकी होती है, तो फिर उनके जहन में जो सवाल होते हैं तो वो उन सवाल का हम जवाब देते हैं, हमारी बाकायदा टीम है, उनको तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 क्लासें आ रही होती हैं मुख्तलिफ स्कूलों से।
तभी आप नोट किया वैसे उनके सवालात कोई इस तरह के बातें तो आप कहते हैं सुबह अल्लाह कितनी मिसकंसेप्शन है बच्चों को, चाहे वो बच्चों पाकिस्तानियों के साथ फिरते रहते हैं मुसलमानों के साथ उनका उतना बैठना होता है, कभी कोई ऐसा सवाल आपके जहन में आ रहा है जो आपके पूछा हो तो आपने जवाब तो दे दिया लेकिन आप सोच रहे हो कि बहुत कितना बड़ा काम है कि ये आते हैं यहाँ पर?
देखें, हमारे यहाँ वहाँ से 2-3 साल पहले की बात है, हमारे एक जो है वो एक इमाम थे, वो एक दूसरे मसलक की मस्जिद में चले गए
अच्छा यहीं पर।
यहीं पे। तो जुमे का टाइम था, तो उन्होंने जनाजा पढ़ना था, तो करीब मस्जिद थी कब्रिस्तान के, तो चले जुमा इधर पढ़ लेता हूँ तो वो चला जाता हूँ। तो उन्होंने जुमा वहाँ पे पढ़ा, नहीं पढ़ाया भी नहीं, पढ़ा पीछे मुक्तदी के तौर पे। तो बाद में वहाँ जो मस्जिद की इंतजामिया थी, उन्होंने कहा कि जी मस्जिद को साफ करो, धो पाक
अल्लाह
करो, ये
अकबर।
मस्जिद जी नापाक हो गई। इन्हें हम मुसलमानों का अपना रवैया ऐसा है। तो उस सिचुएशन में वहाँ के मुक्तदियों ने मुझे पर्सनली खुद बताया कि जी आपके फलाँ इमाम साहब यहाँ पे आए थे, तो ये जी हमारे इमाम साहब ने ये किया। वो
इसी
खुद जहर बात
इसी
है
बहाने सफाई भी कर लिया ना उन्होंने फिर।
वो थोड़े से ना बदजन हुए कि ये कौन सा रवैया है, ये कौन
जाहिर
सा
जाहिर
इस्लाम
सी बात।
है। तो हमने इस हवाले से हमारी पॉलिसी ओपन है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, और अल्लाह की मखलूक जो भी आना चाहे, इंसान जो भी आना चाहे, इस्लाम के बारे में पूछने के लिए आना चाहते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। कई
अच्छा
दफ़ा ऐसे होता है कि ख्वातीन ये जो नॉर्वेजियन है वो आके हम देखना चाहते हैं जी आप नमाज कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, कोई मसला
बिल्कुल
नहीं, आप बैठे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चीज़ें, अब वो बच्चे जब आते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं आते, स्टूडेंट नहीं आते, बल्कि 2 हफ्ते पहले उनकी टीचर्स की क्लास आई हुई थी, तो मेरी उनके साथ से। तो अब उनको चूंकि बेसिक नो हाउ हो चुकी है सारे मामला के हवाले से, तो उनके जहन में हमारे जो यानी जो फैमिली इश्यूज हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें जिनको हम जिस अंदाज में हैंडल करते हैं, तो वो सवालात उनके जहनों में होते हैं। ठीक है, जैसे आमतौर पे सवाल किया जाता है बच्चियों को पर्दा करवाने के हवाले से, ये जी उस शायद ज़बरदस्ती पर्दा करवाना है, निकाब है, हिजाब है, अच्छा इस तरह के सवालात किए जाते हैं। तो अच्छा इसी तरह मतलब सियासी सवालात इतने नहीं होते कि जी फलस्तीन में क्या हो रहा है, या जो है वो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जो जोग्राफियाई जो मसाइल हैं लोकल वो अपनी जगह पे, लेकिन
सोशल इश्यूज हो गए,
सोशल
पर्सनल
इश्यूज
इश्यू बन
को
गए। बिल्कुल
सोशल इश्यूज को किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग भी उन चीज़ों को ना मिसकोट करते हैं, और उन चीज़ों को कल्चरल को जब हम फोकस करते हैं तो फिर वो कन्फ्यूजन पैदा होती है। जैसे डिबेट यहाँ पे चली थी ख़वातीन के खतनों के हवाले से, बच्चियों का खतना, ठीक है, तो वो मज़हब की तो कोई उसमें तालीम नहीं है, वो तो एक इलाके का मखसूस एक वो
अफ्रीका
कबीला है, उनका कल्चर
में
है, और अफ्रीकन में तो वो ये करते हैं, लेकिन उसको पेश इस अंदाज में किया जाता है कि इस्लाम शायद ये कहता है कि जी ऐसे करो और ऐसे करो। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब आप बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, आप दलील से उनको बात समझाते हैं, तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है।
माशाल्लाह।
लेकिन जब आप फासला रखते हैं, आप अपने आप को ये यानी इनसिक्योर आप भी फील करते रहते हैं, वो आपके बारे में, आप उनको जवाब ही नहीं देते, वो आपके बारे में नेगेटिव होते रहते हैं।
बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ये जो आयत वली के बारे में कुरान में है, जो ये मिसकोट होती है, ये मिसयूज होती है और साथ साथ
नहीं,
मिसअंडरस्टूड होती है,
मिस अंडरस्टूड आप इसको कह
ठीक
सकते
है?
हैं, मिस अंडरस्टूड कि उसका मतलब क्या है और हमने उसको किस अंदाज में लिया हुआ है। तो यानी दोस्त जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड से मना नहीं किया गया, फ्रेंडशिप का मतलब यह है कि आपका उठना बैठना है, आपका आना जाना है, ठीक है, तो उसमें कोई उस हवाले से ममानियत नहीं है, लेकिन जो ममानियत है वो उनको अपना यानी
बिल्कुल
हमराज बना लेना या एडवाइजर बना लेना, और वो उन चीज़ों से मना किया गया।
माशाल्लाह। तो कोई आखिर में आप हमारे लिसनर्स को ओवरऑल एक समरी के तौर पे उनको क्या एडवाइस देंगे, जो कि इस वक्त जैसे कि आपने बड़ी शुरू में बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि ये कोई नॉर्वे पाकिस्तान का इशू नहीं है, ग्लोबल विलेज है, टिकटॉक पे हैं, इंस्टा पे हैं, फेसबुक पे हैं, हर एक जगह पे हम मौजूद हैं, जहाँ पर हमारा उठना बैठना डिजिटली हर उस बंदे से है जो कि शायद हमारे बैकग्राउंड के साथ उसका ताल्लुक ना हो रिलीजियसली। तो हमें किस तरह से अपने आप को आज से, जैसे होता है ना, मैं समझता हूँ कि जो कोई भी बात हम कर रहे हैं किसी न किसी समाज के लिए, वो बनी ही उनके लिए है। अभी जो सुन रहे हैं शायद आज किसी की ज़िंदगी चेंज हो जाए कि किस कैसे मैंने अभी इंटरेक्ट करना है फेसबुक पर जाके, जिसको मैंने कुछ सुनानी थी, कि कैसे आपने अपने आप को कैरी करना है।
देखें, हमें कुरान ने इस हवाले से ना बड़ा खूबसूरत तालीम दी है कि इदफा बिल्लती ही अहसन, यानी अच्छाई और बुराई, ठीक है, ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो
जी
आप मिस बिहेवियर का जवाब आप अच्छे बिहेवियर से देंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो मुखालिफ है वो भी आपका जो है वो आपके अखलाकी बरतरी को तस्लीम कर लेगा। तो ये कुरान ने हमें बताया है कि लोगों के मिस बिहेवियर को आप बर्दाश्त करें और जवाब अच्छे अंदाज से दें, अच्छे अखलाक के साथ दें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें दो चीज़ों का खसूसी ख्याल करना चाहिए, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है कि हम मुसलमानों के जितने भी मसालिक हैं या मकातिब फ़िक्र हैं, मकातिब फ़िक्र का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते
ज्यादा
हैं।
बेहतर
फ़िक्र का
बिल्कुल
लफ्ज़ क्या है कि एक बंदे की फ़िक्र ये है कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है, दूसरे की फ़िक्र ये है कि ये ज़्यादा बेहतर है। मसला तो एक दूसरे की सिर्फ इख्तलाफ आ जा के ना प्रायोरिटीज़ का आ जाता है या बेहतर और जो है वो औला और गैर औला का आ जाता है, इसके अलावा तो कोई उसमें
बिल्कुल
इख्तलाफ
सही
नहीं होता। एक कहता है कि ये काम करोगे ज़्यादा सवाब मिलेगा, दूसरा कहेगा कि ये काम करोगे तो ये ज़्यादा सवाब मिलेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस्लाम की जो तालीमात हैं, ये जो कुरान है और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन दो चीज़ों को जब तक तुम थाम के रखोगे तुम कभी भी डिट्रैक्ट नहीं हो सकते,
बिल्कुल
कुरान और हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत। तो हुजूर की सुन्नत जो भी आप लेते हैं, जिस अंदाज में भी आप लेते हैं, ठीक है, तो अब ये सिर्फ आ जाके मकातिब फिक्र में ही इख्तलाफ होता है। कहता है कि ये अमल ज़्यादा सवाब वाला है, दूसरा कहता है ये ज़्यादा सवाब वाला है। तो इस भी ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो तो कुरान की हो रही है ना, अमल तो सुन्नत पे ही हो रहा है ना। तो इसमें हमें एक दूसरे को काफिर और मुशरिक और मुर्तद और इस तरह के अल्फाज इससे अवॉइड करना चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए, बर्दाश्त जो है वो पैदा करते हुए एक दूसरे को एक्सेप्ट और एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है इंटरनली, क्योंकि हमारे इंटरनल ये चीज़ें फिर आगे एक्सटर्नली भी चीज़ों को अफेक्ट करती हैं, स्पेशली ऐसे माहौल के अंदर और स्पेशली सोशल मीडिया पे और उन चीज़ों पे, कि जब हम वो अपने मसाले के अख्तिलाफ़ को लेके बैठ जाते हैं, बहस शुरू कर देते हैं, तो भी जो आम लोग होते हैं जो मुसलमान नहीं भी होते हैं तो उनके लिए वो चीज़ें एक लिहाज से वो अजीब सी बन जाती हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी जो चीज़ है एक्सटर्नल, एक्सटर्नली भी हमें जो है वो डिस्टेंसिंग नहीं रखनी चाहिए, फासला नहीं रखना चाहिए। जैसे इस्लाम के अलावा जो दीगर मजाहिब हैं, ठीक है, कोई लोग किसी मज़हब को मानते हैं या किसी मज़हब को भी नहीं मानते हैं, ठीक है, इंसान तो है ना, ठीक है, इंसान होने के नाते हमें उस दायरे पे, यानी पहले मुसलमान और फिर इंसान, इंसानियत का दायरा, उसको भी हमें देखना चाहिए और उसके मुताबिक हमें लोगों के साथ रवैया रखना चाहिए कि औलाद आदम है, ठीक है, और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह
ईमान के बिल्कुल
अल्लाह इनको हिदायत दे, ईमान दे, और अल्लाह मुझे भी सीधा रास्ता दिखा, हमें खुद भी हिदायत की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि हम अपने आप को हिदायत पे समझ रहे हों लेकिन हम अपने रवैये की वजह से लोगों को इस्लाम के करीब लाने के बजाय इस्लाम से दूर करने का जरिया बन रहे हों, सबब बन रहे हों।
सही
क्योंकि लोग यहाँ पे, ये अक्सर मैंने बात की है कई दफ़ा, शायद इस प्लेटफॉर्म से भी पहले बात हुई है, कि लोग ये नहीं देखते हैं कि जी इस्लाम की तालीमात क्या हैं। लोग इस्लाम को पहचानते हैं हमारे अमल से। तो हम एक अमल करेंगे ना, मैं अगर एक काम करता हूँ तो ये समझा ही जाएगा कि ये जिस बंदे का वास्ता ही मेरे साथ पड़ा है तो उसने इस्लाम को मेरे जरिए ही देखा है, तो वो कहेगा
बिल्कुल
ये मुसलमान तो सारे ऐसे ही होते हैं।
हाँ सही बात
अच्छा, दूसरा फिर क्या कहेगा, वो ये पाकिस्तानी सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना, इसमें बड़ा मोहतात होना चाहिए कि मेरा ये जो अमल है, मेरे इस अमल की वजह से इस्लाम पे जो है वो उसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। फ़ायदा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन नुकसान का अंदेशा है तो फिर हम क्या करें, उससे अपने आप को पीछे कर लें, यानी हम इज्तिमाई नुकसान ना करवाएं। और इंटरनल और एक्सटर्नल का ये फ़र्क ले के चलेंगे तो फिर मामलात आगे बेहतर अंदाज में चलते रहेंगे।
माशाल्लाह, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया हमें। थैंक
जजाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया।
यू वेरी मच।